ایک عورت ہے وہ جوتا مار رہی ہے اور مرد کو جوتا چھیڑا اور اس پر لکھا ہوا ہے عشق کا علاج جوتا. کھوتے کو جوتا ہی پڑے گا نا. تو تکبر کا علاج بھی یہی ہے, ذلیل و خوار ہوتا ہے. جو بندہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جس وقت اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوتا ہے, بلکہ تکبر کرنے والا مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل ہوتا ہے. جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے مخلوق بھی جتنا ذلیل ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ کتے اور سور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. اور جو اپنی نظر میں ذلیل ہوتا ہے, یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میرا علم, میری عبادت, میرا مال, میری اولاد, میری جو بھی نعمتیں ہیں, یہ تو اللہ کی عطا ہے, اللہ میرا کیا کمال ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھو آگے ہو کے بیٹھ جاؤ, ٹیک مت لگاؤ. میں کیا کر سکتا ہوں, میرا کیا ہے, اللہ آپ کی عطا ہے, اگر آپ نے مسجد میں بھیج دیا تو اللہ میرا کیا کمال ہے, آپ کی عطا ہے, آپ نے جو داڑھی کی نعمت عطا فرمائی آپ کا کمال ہے, آپ کی عطا ہے. کسی چیز کو اپنا کمال نہ سمجھے, علم کو, تقریر کو, عبادت کو, حج و عمرے کو, مال خرچ کرنے کو, ماں باپ کی خدمت کو, تبلیغ میں جانے کو, کسی چیز کو اپنا کمال نہ سمجھے, آپ کی عطا ہے. ایسے شخص پر اللہ کی رحمتیں خاصہ ہوتی ہیں اور ایسے شخص کو عزت ملتی ہے. یہی وہ شخص ہے جو عزت پاتا ہے, کیونکہ حدیث شریف میں ہے من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے. کس کے لیے ہو؟ للہ. بعض لوگ تواضع اس لیے کرتے تاکہ مخلوق کو پتہ چلے جی حضرت بڑے سب کو تواضع ہیں. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نا, ایک شخص تھا تو بتایا کہ حضرت ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو بہت ہی ذلیل ہوں, میں تو بہت ہی حقیر ہوں. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں نا اپنے کو, ارے جی میں تو بہت ہی کمینہ ہوں, بڑا ذلیل ہوں میں تو, ایسے ہی ہے. تو حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کوئی شخص ہمت کر کے اس کو کہہ دے واقعی آپ ذلیل ہیں, واقعی آپ کمینے ہیں, تو فرمایا دیکھو پھر دیکھو کیسا لگتا ہے. پھر دیکھو کیسا, تو پتہ چلا یہ تواضع نہیں ہے. کیونکہ جو اپنے کو ذلیل سمجھتا ہے نا وہ کہتا نہیں ہے, جو اپنے کو حقیر سمجھتا ہے وہ زبان سے نہیں کہتا پھرتا کہ میں ایسا ہوں فلاں فلاں ہوں. جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اس کو بھی گڑبڑ ہے, کیونکہ تواضع تو قلب میں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے. اور تواضع کی علامت کیا ہے؟ بطر الحق, کہ حق بات کو نہ چھپائے. کہہ دیجیے مثلا جی اچھا جناب آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے ہمت کی توفیق دے, یہ کہہ دے. کہہ دیا کہ بھائی گاڑی ذرا صحیح جگہ پہ کھڑی کر دو یا لوگوں کو تکلیف ہوگی, نہیں مان. یا جی جناب سنت کے مطابق یہ کام ہے ایسا کر لو, اسے یہ کام نہ کرو. نہیں جی ہم تو مانے, ہم تو کیونکہ ہماری اگر ہم نے بات مان لی تو ہماری عزت میں کمی آ جاتی ہے. اور غلط کام کیا معافی بھی نہیں مانگ رہی, کیوں معافی مانگے گی؟ او معافی میں مانگوں, او میں تو ذلیل ہو جاؤں گا معافی مانگ کر. حالانکہ معافی مانگنے میں عزت ملتی ہے, بظاہر ذلت معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں عزت ملتی ہے, بظاہر ذلت معلوم ہوتی ہے. لہٰذا جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے, اپنے کو مٹا دے, تو رفع اللہ, اللہ کی طرف سے رفعت کا وعدہ ہے, بلندی کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملنے کا وعدہ ہے. دیکھو یہ بچے کیا کر رہے ہیں, اور دوسری علامت کیا ہے؟ غم تو ناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ دیکھو الو نماز نہیں پڑھتا, الو کہیں کا داڑھی نہیں رکھتا, یعنی جس کی داڑھی ہو, جس کی داڑھی ہو وہ شخص, جس کی داڑھی نہ ہو اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے اس کے لیے. مسئلہ تو یہ ہے, معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو. کیوں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں غمت الناس کا جو الافلام ہے الناس کا, یہ استغراق کا ہے. لہذا کسی کافر کو بھی حقیر سمجھنا حرام ہے. کافر کے کفر سے تو نفرت ہے, گناہ گار کے گناہ سے تو نفرت ہے, لیکن گناہ گار کو حرام سمجھنا, حقیر سمجھنا حرام ہے. کافر سے تو کافر کے کفر سے تو نفرت کرے گا, لیکن کافر سے نفرت حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آج کافر ہے کل مسلمان ہو سکتا ہے. اور انہیں یہی تو فرما رہے کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو. کل اگر یہ مسلمان ہو گیا کسی گناہگار کو حقیر مت سمجھو کہ اس کی داڑھی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا, زنا شراب پیتا ہے, اس کو بھی حقیر مت سمجھے, توبہ کر لے. اور یہ جو اپنی جس کے چہرے پر داڑھی ہے اگر اس نے اپنے پر چھوڑ سمجھا, کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ داڑیاں رکھنے کے بعد کاٹ ڈالی. ایسے ہیں کہ علم پڑھا, عالم بنے, تبلیغ میں وقت لگا ہے, حج و عمرہ ہے, داڑیاں بڑی بڑی, پگڑیاں سر پر, تھوڑے دن گزرا پگڑی اتار دی, داڑیاں منڈا دی, لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے, فلمیں دیکھ رہے ننگی ننگی, ایسے بھی لوگ ہیں جناب. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے. بس اپنے کو کچھ یہی کہہ کہ اللہ آپ نے داڑھی دی, اللہ آپ کہتا ہے اللہ جیسے آپ نے مجھے داڑھی دی میرے مسلمان بھائی کو بھی داڑھی دے دیجیے. یہ میرا بھائی ہے کہ بھائی بھائی کیا چاہتا ہے, بھائی کے لیے خیر خائی کرتا ہے نا, کہ اللہ مجھے بھی داڑھی دی اس کو بھی دے دیجیے, اللہ ہم سب کو داڑھی دے دے. اور پھر بات یہ کہ جس کی داڑھی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے شیر, ایک ہوتا ہے شیرنی, ایک ہوتا ہے شیر. جنگل کا بادشاہ کون ہے, شیر ہے یا شیرنی؟ شیر ہے نا. اچھا شیرنی کی داڑھی ہوتی ہے نہیں ہوتی, اور شیر کی ہے نا, شیر, اور شیر ہوتا ہے مذکر, اور شیرنی ہوتی ہے مؤنث. جو داڑھی رکھے گا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, اور جو داڑھی نہیں رکھے گا وہ مؤنث ہے نا. تو بتاؤ بھائی شیر بننا ہے یا شیرنی؟ جو شیر بننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. جو شیر, ارے بھائی شیر بننے والے کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ شیر نہیں بنے گا, کھڑا کرنا ہاتھ, میں بھی کھڑا کروں. بس اور شیر کیسے بنے گا, شیروں جیسی شکل بنا دے, کتنا آسان ہے. اچھا داڑھی رکھنا بہت آسان ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو نماز پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ, وضو کرو, استنجا کرو, وضو کرو, پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھو, کتنا ہے. داڑھی رکھنا تو بہت آسان. وہ کہتے ہیں بس آپ داڑھی چھوڑ دیجیے. دیکھو داڑھی کاٹنا کتنا مشکل ہے, اپنے پیارے پیارے نرم نرم گالوں کو پکڑ کر ایسے کیسی کھچائی کرنی پڑتی ہے نا, رگڑنا پڑتا ہے, مشکل کام ہے نا, پیسہ بھی لگتا ہے, بلیڈ کا پیسہ, جہاں سے چھلواؤ اس کا پیسہ, پھر داڑھی کو کاٹنے کے بعد پھر پھیرتا بھی ہے کہ میں کیسا چکنا لگ رہا ہوں. بعض لوگ داڑھی کے بعد اپنے ہاتھ بھی پھیرتے ہیں ایسے کر کے کہ میں کیسا چکنا لگ رہا ہوں. ایسے ہاتھ پھیرنے والے تو دوسرے بہت مل جائیں گے بھائی, ان سے پھروا لو. ایسے تو یار لوگ گھوم رہے ہیں. میرے مرشد کیا فرماتے ہیں, پہلے ایک کوٹ, پھر دوسرا کوٹ, اور تیسرا کوٹ کھوٹی اخاڑ کوٹ. جزت نام رکھا ہے, دو دو تین تین دفعہ کرچ کرچ کر نرم نرم گال پر بلیڈ چلانا. بتاؤ کتنی تکلیف نہیں ہے, عذاب ہے نا گالوں کو. اور داڑھی رکھنے میں کتنا آسان, کوئی محنت نہیں ہے, صبح صبح اٹھے بس منہ دھویا چل پڑ, شیر جیسے ہوتا ہے. اب آتا ہے اگر شیر حجام کے پاس آ جائے, شیر حجام کے پاس آ جائے, ذرا مجھے بھی چکنا بنا دو مسٹر بش کی طرح, تو شیر رہے گا وہ, اس سے کوئی ڈرے گا؟ اگر شیر داڑھی کٹوا دے شیر سے ڈرے گا کوئی؟ کہے گا یہ تو شیر نہیں ہے, بلکہ شیر نہیں کیا بندریاں لگے گی. وہ میرا ایک جگہ بیان ہوا تھا تو پنجاب میں نا, ایک بچہ اس نے سنا, وہ آیا تھا, کہتے تم نے جو بیان کیا تھا داڑھی ذرا وہ سناؤ مجھے. میں کون سا؟ کہتے وہ تم نے کہا تھا جو داڑھی رکھتا ہے اور مونچھ کاٹتا ہے وہ لگتا ہے. میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا, میں نے بتایا تھا کہ جو داڑھی رکھتا ہے اور مونچھوں کو کاٹتا ہے, مونچھیں باریک, کیونکہ اصل طریقہ یہی ہے کہ داڑھی رکھے مونچھیں کاٹے. ہم لوگ مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑھی کو کاٹتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے رب نے حکم دیا کہ داڑھی کو رکھو مونچھوں کو کاٹو, یہ طریقہ ہے. تو جو آدمی داڑھی رکھتا ہے مونچھوں کو کاٹتا ہے, اس کے چہرے پر شرافت معلوم ہوتی ہے. اور جو داڑھی رکھتا ہے مونچھیں بھی رکھتا ہے وہ چنڈ لگتا ہے پکا, 420 نہیں چنڈ لگتا ہے بس, یہ کافی ہے 420 نہیں. اور جو पूछे रखता है, वो गुंडा लगता है, है ना भाई। और जो तो एक साथ को मैंने बताया तो पूछने लगे, अच्छा जो दाढ़ी भी नहीं रखता और मूछ भी नहीं रखता, मैंने कहा वो छिलावा आलू लगता है। अल्लाह ताला ने देखिए, अगर अल्लाह ताला ने दाढ़ी ना देनी होती जैसे औरतों को नहीं दी, मर्द को भी ना देते, ऐसे ही होता ना भाई। लेकिन अल्लाह ताला ने मर्दों को दाढ़ी दी, औरतों को नहीं दी। क्यों? इसलिए कि औरतों का गाल तो रखा है इसलिए कि उसका चुम्मा लिया जाए, वो तो रखा है इसलिए अल्लाह ताला ने, मर्दों का तो नहीं है ना। दादा जो अपने गालों को चिकना कर रहे हैं वो क्या चाहता है, उसका चुम्मा लिया जाए, यही मकसद है सर। क्योंकि अल्लाह ताला ने औरतों का तो नहीं रखा, औरतों का गाल को खाली रखा प्यार करने के लिए, और मर्दों को नहीं रखा। इसलिए मेरे दोस्तों, अच्छा अगर दाढ़ी रखेंगे हम लोग, मेरा कोई फायदा है? मेरा कोई फायदा है दाढ़ी से? जो रखेगा उसी को फायदा है ना, मैं नहीं रखूंगा मुझे फायदा, जो रखेगा उसको फायदा है, और दुनिया का भी आखरत का भी। जो दाढ़ी रखता है दुआ उसी से कराई जाती है, इज्जत उसी को मिलती है। जो दाढ़ी नहीं रखता उससे कोई दुआ कराता है? बताओ भाई, जो दाढ़ी होती है उसी से दुआ कराता है ना। इंसान में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो दाढ़ी वाले को देखता है कि सर पर टोपी है। जो सर पे मस्जिद में भी आते हैं हम लोग टोपी नहीं पहनते, बाजार में जाते हैं वहां टोपी पहनते तो नहीं, देते बहुत है। मस्जिद में आए नंगे सर, मसला तो ये कि बात असल तो ये है कि नंगे सर तो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मस्जिद में आए तो कम से कम टोपी पहने ना। बाद लोग रुमाल बांध लेते हैं, तो रुमाल बांधने से सुन्नत अदा नहीं होती है, असल सुन्नत तो टोपी पहनने से अदा होती है। हम कपड़ों के लिए, चाय पीने के लिए, नस्वार के लिए, सिटी 2100 और पता नहीं क्या क्या चीजें खाने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं। 35-40 रुपए की, 50 रुपए की टोपी नहीं खरीद सकते? मेरी टोपी की दुकान नहीं है भाई, क्योंकि मैं हर जुम्मे ऐलान करता हूँ कि भाई टोपी पहनना सुन्नत है, तो हाँ भाई टोपी की दुकान खुली होगी ना, इसलिए ऐलान करते हैं बार बार। अच्छा, ना टोपी की दुकान है, ना किसी टोपी वाले से मुझे कमीशन मिलता है, कमीशन भी नहीं मिलता। हमारा कमीशन है वो क्या है, लसनुकुमारिहिअजरा इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह ताला से कमीशन लेना चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मोहब्बत की बात आपके बंदों को सिखा रहे, सुना रहे, जो आपसे सीखने आ रहे हैं उसी को तो सुना रहे हैं ना भाई। आप लोग सीखने के लिए आ रहे हैं ना, सुनने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपको सुनाते हैं। अगर आप सुनने के लिए ना आए फिर भी सुनाएंगे, जो आएगा उसी को सुनाएंगे, और इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। दाढ़ी रखने में मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, क्योंकि दाढ़ी से अल्लाह की मोहब्बत गाढ़ी हो जाएगी, दाढ़ी से अल्लाह की दोस्ती और अल्लाह की मोहब्बत गाढ़ी हो जाएगी, और दुनिया में भी इज्जत है मेरे दोस्तों। तो मैं बता रहा था कि किसी काफिर को भी हकीर समझना हराम है। क्यों? हो सकता है कल मुसलमान हो जाए। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपने दीन से फिर जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अपने कर्म से ईमान पर जिंदा रखे, ईमान और सेहत पर, और ईमान और सेहत पर जिंदा दुनिया से ले जाए। इसलिए किसी काफिर को भी हकीर समझना हराम है। तो जब काफिर को हकीर समझना हराम, तो एक मुसलमान अगर गुनाहगार है उसको हकीर समझना कैसे जायज होगा? लहजा गुनाहगार से देखो, मरीज जो होता है ना, मरीज को डांट पिटाई की जाती है। अगर कोई आदमी किसी को दस्त लगे हुए हैं, पसाने कर रहा है, और फिर क्या बेवकूफ तो पसाने किए जा रहा है, ऐसे बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं भाई तुम अपना इलाज कराओ, गोश्त मत खाओ, तुम्हारा पेट खराब है, क्यों गोश्त खा रहे हो? उसको समझाया जाएगा, ये थोड़ी कहे कहे चलो आओ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। ऐसे ही कोई अगर गुनाह में मुबतला है तो उसको समझाए कि देखो अच्छा काम नहीं है, ये फिल्में देखने से कुछ नहीं मिलेगा। जूस की दुकान पर बैठकर कैसे फिल्म देखते हैं, मुंह खोलकर, और हाथ कहीं और मशगूल भी होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, मुंह खोलकर और कुछ भी कहते रहो हाथ से। कभी कभी कहीं काम से गुजर, जूस की दुकानें फिल्में चल रही है वहां पर, ऐसे ही होता ना, है ना?
होता भाई,
झूठ तो नहीं बोल रहा है, होश ही नहीं है। और फिर मैं देख रही आगे आखिर में क्या मिला, मैं बताता हूँ क्या मिलता है, वो मेरा काम है बताना। पजामा खराब होता है, फिर जाकर ख्याल, फिर बिस्तर पर लेटकर ख्याल पकाते कि मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ, मैं भी सलमान खान हूँ, अब ख्वाब में हीरोइन के साथ घूम रहे। फिर बाद में उठे तो पता चला कि सुबह गुस्ल करने की जरूरत पड़ गई, ये हीरो का हाल हुआ। हीरोइन को लेकर घूम रहे खेतों में, और आखिर में यही हाल हुआ। ऐसा ही है ना, सेहत तबाह हुई। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का एहसान आजीम है, ये जो नेकी को फरमाया मारूफ, नेक काम का नाम क्या रखा, मारूफ। मारूफ माने पता है क्या है, जाने पहचाने। जैसे ये ना कहते जी हम मारूफ है, ये तो जाने पहचाना आदमी है, और जाने पहचानने वाले आदमी से मिलने से घबराहट नहीं होती। दोस्त आ जाए जान पहचान, अरे ये अच्छा आ जाओ यार, ये तो अपना दोस्त है। और बुराई का नाम रखा मुनकर, मुनकर के नाम माने अजनबी। जैसे अजनबी कोई आ जाए, पता नहीं यार ये कौन है, कहाँ आया, किसका आदमी है, कहाँ से आया, कौन है, घबराहट होती है ना अजनबी को देखकर। बस गुनाह भी यही है, गुनाह जब इंसान करता है तो खुद दिल में घबराहट होती है। जैसे किसी औरत को देखता है तो दिखता भी है, इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि गलत काम कर रहा है ना, दिखता भी रहता है, किसको पता ना चल जाए। जब नंगी तस्वीरें लेकर जाता है ना तो छुपा के लेकर जाता है कि किसी को पता ना चल जाए, क्यों, गंदा काम है ना, जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। फिल्में देखता है तो छुपाता है, बताना नहीं। कहते थे देखो मैं जा रहा हूँ शबे जुम्मा में, वहां से चले, वो कहते हैं शबे जुम्मा और चले जाते हैं फिल्म देखने। क्या रखते हैं शबे जुम्मा कि मदनी मस्जिद में जा रहा हूँ, तो कहते हैं भाई तू वहां नजर नहीं आया, अब क्या इतना बड़ा मजमा में मैं कहाँ मिलूंगा, पता चला चला फिल्में देख रहे थे। ऐसे भी हरकतें करते हैं लोग, लेकिन ये ना कहना अच्छा बोलता भी तो आपने तरकीब अच्छी बताई, हमें तो मालूम ही ऐसा भी कर सकते हैं। बड़े लोग ये भी करते, बड़े लोग ऐसा भी करते, ओ ये तो बड़ी जबरदस्त तरकीब है, अब बस ठीक है घर से निकलूंगा शबे जुम्मा में जा रहा हूँ, मैं वहां चले जाऊंगा, तो बड़ा अच्छा काम है। बाद लोग तकरीर से ये भी नतीजा हासिल करते, अपने मतलब की ऐसी बातें लेते, यार ये तरकीब तो बहुत जबरदस्त है, तो सब आहिंदा में ऐसे ही करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अपने को बंदगी की हकीकत क्या है, देखो हमारा हाल क्या है, आज जवानी है, सेहत है, सब कुछ है, एक दिन हम लोग कब्रों में लेटे हुए होंगे, कीड़े खा रहे होंगे हमको, हमें सलूट मारने वाले, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा माल, हमारे कारोबार, हमारे काम, हमारे यार, कब्र में कोई भी नहीं होगा, वहां कैसे होंगे, अकेले बिल्कुल कुछ नहीं होगा वहां पे। फिर सलूट मारने वाले काम आएंगे, फिर नारे लगाने वाले काम आएंगे, फिर कोई काम ना आएगा। इमाम मस्जिद भी जब जाता है कब्र में, अकेले जाता है या मुक्तदियों को साथ लेकर जाता है? अगर मुक्तदी को साथ लेकर जाता ना तो कोई भी इमाम के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ता, अरे ये मरेगा तो हम भी मरेंगे। अकेला जाता है मेरे दोस्तों, हर आदमी अकेला जाता है। और वहां पर जो काम आती है चीज, वो ये दाढ़ियां मुंडाना, औरतों को देखना, फिल्में देखना, ये माल का कमाना, ना उसमें हलाल देगा ना हराम, किसी बैंक से मिल रहा ले लो, सूद ले लो, मशीन ले लो, डंपर ले लो, गाड़ी ले लो, मकान ले लो, जी हमारा मकान बड़ा हो जाएगा, जरा पता चलेगा हम भी बड़े लोग हैं, शादी पे फायरिंग नहीं करेंगे जब तक, कैसे पता चलेगा कि हम बड़े लोग हैं, पता चलना चाहिए जी, पटाखे वटाखे फायरिंग, खूब फायरिंग हो रही है, ये क्यों बड़े आदमी है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सब चीजें हैं मखलूक की तारीफ, कब्र में काम नहीं आएगी। कब्र में काम आने वाली जो चीज है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह ताला का ताल्लुक है, ये काम आने वाली चीज है। और अल्लाह ताला से ताल्लुक कैसे पैदा होता है, जिनका अल्लाह ताला से रابطہ है, जिनका अल्लाह ताला से ताल्लुक है, जो अल्लाह की फरमाबरदारी की हयात गुजार रहे हैं, गुनाह से बचने का गम उठा रहे हैं, उनसे दोस्ती करें, उनसे ताल्लुक पैदा करें, तो नतीजा क्या होगा, जिसका रابطہ है वही रابطہ करा देगा। अब एक आदमी का किसी सरकारी अफसर से रابطہ है तो आप क्या करेंगे, यार हमारी भी दोस्ती करा दो, ठीक है मेरे साथ चलना, अब वो लेकर जाएगा, कहेगा वो पूछेगा ये कौन है, मेरा दोस्त है। अच्छा दोस्त है, चलो तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त है। बस ऐसे ही अल्लाह ताला के वो आशिकीन जो अल्लाह की दोस्ती जिनको मिल गई, कैसे मिली, गुनाह छोड़ने से, फरमा बरदारी करने से। जब उनसे दोस्ती करेगा तो अल्लाह भी ऐसे कहेगा कि अल्लाह ये मेरा भी दोस्त है। बस एक आखिरी बात सुनाता हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि हजरत फला आदमी का इंतकाल हो गया, देखो इनको उठा दो, ये बराबर वाले, उनको बता दो अभी भाई अभी बस में सफर नहीं है, जागते हुए सुन लो। तो हजरत दुआ फरमा दीजिए, हजरत से क्या कर सकते हैं कि दुआ फरमा दीजिए उसके लिए। पूछा क्या वो मुझसे मुरीद था, कहा नहीं हजरत वो आपसे मुरीद नहीं था, आपका शागिर्द नहीं था। पूछा कि अच्छा कभी उसने मेरी तकरीर सुनी थी, कहा नहीं हजरत आपकी तकरीर नहीं सुनी थी। पूछा कि अच्छा कभी उसने मुझे देखा था, कहा नहीं हजरत उसने आपको देखा भी नहीं था। फिर फरमाया कि अच्छा कि कभी मेरी निगाह उस पर पड़ी हो चलते हुए, कहा नहीं हजरत आपकी निगाह में कभी उस पर नहीं पड़ी। हजरत ने हाथ उठाया दुआ फरमाई, महाराज इरशाद फरमाया कि मेरा कोई खुसूसी ताल्लुक तो है नहीं जो मैं अल्लाह से मांगू, यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी मफरत फरमा दीजिए, तमाम मुसलमानों की मफरत फरमा दीजिए। तो पता चला कि ताल्लुक अगर पैदा होता है, कहते ना जी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, क्या कहते हैं खुसूसी दुआ में रास्ता और ताल्लुक जो है खुसूसी दुआ मांगते खुसूसी, ये कैसे हो सकता है भाई, खुसूसी जिससे ताल्लुक होगा उसी के लिए खुसूसी दुआ होगी ना। अब एक आदमी रोजाना आपके से मिलने आ रहा है, रोजाना कहता है यार क्या हाल है खैरियत पूछते हैं और सब कभी कभी चाय पानी भी पिलाते हैं आपको, तो आप क्या कहेंगे यार ये मेरा खास दोस्त है। और एक आदमी आपसे छह महीने बाद मिलने आया और वो आकर कह रहा है यार खास वाली कोई चीज तो खिलाओ, मैं तो एक दफा मिलने आया तुझे खास खिलाओ, जो खास वाली चीज खास को खिलाता है ना, ये खास ताल्लुक तो खास से पैदा होता है और खास ताल्लुक उससे जो रोजाना आ रहे हैं जो छह महीने बाद आ रहे हैं, रोजाना वाले से है खास ताल्लुक। अब एक आदमी अल्लाह वालों की सोहबत में रोजाना जा रहा है और उनकी बातों पर अमल कर रहा है, जो वो मशवरा देते हैं उस पर अमल कर रहा है, उनसे सीख रहा है कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए आप मेरे लिए दुआ फरमाए, मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, मैं नाफरमानी छोड़कर अल्लाह का फरमा बरदार बन जाऊं। अब अगर वो कहता है कि हजरत जी मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, तो शेख यही कहेगा अरे तू क्या है मुझे कहता है, मैं खुद तेरे लिए खास दुआ कर रहा हूँ। और एक आदमी छह महीने साल में एक दफा मिलने आ रहा है और कह रहा है जी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। वो जैसे कंजूस था ना, तो उसे किसी ने कहा उसके दोस्त ने यार तू अपनी अंगूठी मुझे दे दे। अच्छा देखो अंगूठी का मसला भी सुन लो, यार लोग अंगूठी पहनते और कहते हैं जी सुन्नत है अंगूठी पहनना। तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अंगूठी दो आदमी पहनते हैं, एक तो कादी पहनता है जो कादी मोहर लगाता था पहले जमाने में, और दूसरा लिखा है कि अहमक पहनता है, अहमक बेवकूफ। अगर सुन्नत ही है तो जनाब से पूछो आपको क्या बात है अंगूठी की सुन्नत अदा करने का इतना शौक और चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, शलवार टको तो नीचे है जी, अंगूठी पहनना सुन्नत है, नमाज की सुन्नत है मालूम नहीं है, अंगूठी पहनना सुन्नत है, अजीब सुन्नत है। नंबर एक, चलो अंगूठी पहनना जायज है हराम नहीं है, लेकिन उसके लिए शर्त है वो ये कि सोने की अंगूठी ना हो, सिर्फ और सिर्फ चांदी की अंगूठी पहन सकता है, सिर्फ और सिर्फ चांदी की, मर्द के लिए बता रहा हूं मसला, कि मर्द सिर्फ और सिर्फ चांदी की अंगूठी पहन सकता है, वो भी साढ़े चार माशे से कम हो, कितनी साढ़े चार माशे से कम हो, अगर साढ़े चार माशा या उससे ज्यादा अंगूठी है तो ये हराम और गुनाह है अंगूठी का पहनना। और आलम क्या है, सारी अंगूठियां सजानी है, पांच ही उंगलियां हैं, अगर दस होती तो दस पर भी सजा लेते। बल्कि बाद एक साहब को तो मैंने देखा एक अंगूठी में, एक उंगली में दो दो अंगूठियां पहनी हुई है। और नाम क्या रखा, सुन्नत है। तो याद रखिएगा, अंगूठी पहनना जायज तो है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि चांदी की अंगूठी हो और 4.5 माशे से कम हो। जायज है, ठीक है, काम है, कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो, हम मना तो नहीं कर सकते उसको, लेकिन उसको सुन्नत समझना, ये सुन्नत समझना ये दुरुस्त नहीं है। अंगूठी पहनना जायज है। सरवर आलम सल्लम और खुलाफा काजी जो पहनते थे वो मोहर लगाने के लिए पहनते थे, मोहर लगाने के लिए। और अंगूठी से ज्यादा दूसरी सुन्नतें जरूरी है, नमाज की सुन्नतें हैं, खाने पीने की सुन्नतें हैं, टोपी की सुन्नत अंगूठी से ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस मसले को भी याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और वही बात कि खुसूसी ताल्लुक, किसी खुसूसी ताल्लुक के लिए खुसूसी रब्ता करें। एक बुजुर्ग फरमाते हैं उनसे मिलने की है यही एक राह, मिलने वालों से राह पैदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए, या अल्लाह ताला हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। या अल्लाह ताला, जैसे आप रमजान शरीफ में आपने हमें तौफीक अता फरमाई नमाज की, पाबंदी की, और या अल्लाह ताला फरमा बरदारी की, गुनाह से बचने की, या अल्लाह ताला हमें भी आपकी, या अल्लाह सारा जमाना आपका है, सारे औकात आपके हैं, दिनों रात आपके हैं, और हम भी आपके हैं। या अल्लाह हम सबको ऐसा बना दीजिए कि हम ये शेर पढ़ें, नहीं हो किसी का तो क्यों हो किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा हूँ। या अल्लाह हम सबको अपना फरमा बरदार बना दीजिए, हमारी सुख हमारी सीरत अपने प्यार के काबिल बना। ऐ करीम मालिक, हर गुनाह नाफरमानी से हमें बचा दीजिए। या अल्लाह ताला हमारे तमाम हाजात को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमा। आप हजरात मेरे लिए भी दुआ फरमा दीजिए, तकरीबन एक हफ्ते से मुसलसल बीमार चल रहा हूँ। या अल्लाह ताला मुझे भी सेहत अता फरमा, और मजमे में जो भी बीमार है, हमारे घरों में जो बीमार है, हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो बीमार है, जो मुसलमान जितने बीमार हैं, सबको सेहत अता फरमा, सेहत की नेमत अता फरमा। और या अल्लाह ताला हमारी सेहत की नेमत को अपनी फरमाबरदारी में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी जान, हमारा माल, हमारी आबरू, हमारा इल्म, हमारी जिंदगी अपनी फरमाबरदारी के मुताबिक बना दीजिए। और या अल्लाह ताला हमारे कामों को आसान फरमा, हमारी जरूरियात को पूरा फरमा। ए अलीम हमीद, आप हमारे दिलों के हाल के जानने वाले हैं, हम में से जिसकी जो हाजात है अपने करम से अल्लाह उसको पूरा फरमा दीजिए। और जिन्होंने दुआओं की फरमाइश की है या जिन्होंने नहीं की है वो करना चाहते हैं, या अल्लाह ताला हम सबको अपना खुसूसी ताल्लुक नसीब फरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह ताला अल्लाह वालों की मोहब्बत अता फरमा, और या अल्लाह नेक आमाल की मोहब्बत अता फरमा, और गुनाहों से हम सबको शदीद नफरत अता फरमा दीजिए, हम सबको अल्लाह वाला बना दीजिए। सलामती ईमान सलामती आजा के साथ दुनिया में रखिए, सलामती ईमान सलामती आजा के साथ दुनिया से ले जाइए। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين